एक शख्स आए दरियाफ्त फरमाया कैसे तशरीफ लाए, कुछ फरमाना है। जब इतना सा सवाल किया तो जवाब में कहा जी नहीं, वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। पहली बार तो खुद बोलना था, नहीं बोले। फिर बात पूरी पूछने के बावजूद भी जवाब में कह रहे हैं जी नहीं, वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। जब जाने लगे मगरिब के बाद फजर और सुन्नत के दरमियान में तावी इसकी फरमाइश की, अब फर्ज नमाज हुई, अब सुन्नत पढ़ना है, उस मौके पर आकर कह रहे तावी लेने आया। फरमाया हर काम के वास्ते एक मौका और महल होता है, ये वक्त तावीज का नहीं। जब आप तशरीफ लाए थे तो मैंने इस्तफसार किया था, हजरत अली रहमतुल्लाह, मैं खुद पूछा था आपसे, आपने फरमाया था कि वैसे ही मुलाकात के वास्ते आया। अब आमतौर से लोग इसको अदब समझते हैं, क्या भी बोलना है, खामोश रहना, क्या ये अदब नहीं है, ये एक तरह की बेअदबी है। जैसे मजलिस में जोर से बोलना बेअदबी है, वैसे ही पूछने के बावजूद कुछ भी नहीं बोलना, ये भी एक तरह की बेअदबी है। इसलिए कि जोर से बोलने से जिससे तकलीफ होती है, वैसे नहीं बोलने से तकलीफ होती है, दोनों के सिरे एक साथ मिलते हैं। तो हजरत फरमा रहे हैं कि अब इस वक्त ये फरमाइश कैसी, इस वक्त कूदने के साथ, उस वक्त कूदने के साथ ही आपको फरमाना चाहिए था। लोग इसको अदब समझते हैं, मेरे नजदीक ये बड़ी बेअदबी है। इसके माने तो ये है कि दूसरा शख्स हमारा नौकर है कि जिस वक्त चाहे फरमाइश करें, उसकी तकलीफ होना चाहिए। अब आप भी जरा गौर से काम लिखिए कि मुझको इस वक्त कितने काम हैं। हजरत फरमाते हैं एक तो सुन्नतें और नवाफिल पढ़नी, फिर बाजाकिरीन और शागिरीन को कुछ कहना है। लोग उसी मकसद से सुबह से शाम तक इंतजार में हैं, उनको कुछ जिक्र बताना, वजीफा बताना है, उनको सुनना है, मेहमानों का खाना खिलाना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां। यूपी में तो मगरिब के साथ खाना भी हो जाता है। अफसोस है कि इसी जमाना दुनिया से बिल्कुल अदब और तहजीब उठ गई है। अब तावीज के लिए फिर तशरीफ ना, याद रखिए जहां जाए अव्वल मकसूद का जिक्र करना चाहिए, क्यों आया, क्या मकसद है बता देना चाहिए। इसलिए हमने भी कुछ आदाब वहां लगा दिए हैं, कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कब तक रहेंगे। बिलखुसूस पूछने पर भी नहीं बोलते हैं तो यह और ज्यादा तकलीफ देती हो जाती है। मैं तो हर शख्स से आगे ही थाई रामकुला फरमाते हैं दरियाफ्त कर लेता हूं ताकि जो कुछ कहना है कह दे और उसका हरज ना हो और ना मेरा हरज हो। और मैं खुद इस वजह से पूछ लेता हूं कि अक्सर अहले हवाई जाते हैं और बाद अशरात बवजह शर्म व हया खुद नहीं कह सकते या मजमे की वजह से पोशीदा वक्त जाहिर नहीं कर सकते। बार वक्त कोई पोशीदा मसला रहता है, शर्म का मसला रहता है, सबके सामने पूछे तो उसमें हज़्ज़े नफ्स की बात होती है, तो सबके सामने पूछने से शर्माते हैं। तो हजरत फरमा रहे अगर ऐसी बात है या मजमे की वजह से पोशीदा बात को जाहिर नहीं कर सकते, पूछने से वो बता देते हैं या कह देते हैं कि खलबत में कहने की बात है। मैं जब मौका पाता हूं अलाई की मैं उनको बुलाकर सुन लेता हूं। ये भी है कि अगर कोई ऐसा मसला है तो बोल देना चाहिए कि तनखाई में आपसे एक बात पूछनी है, इस तरीके से। और जब आदमी मुंह से न बोले तो कैसे खबर हो सकती है, मुझे इल्म में गैब तो नहीं है। फरमाते अच्छा, उसके बाद फरमाते बाद मगरिब एक जाकिर शागिर को जिसकी इस्तिदा पर उसको ये वक्त दिया गया एक साहब आए, उन्होंने खुद पूछा सर कोई वक्त दीजिए, तो उनको मकबिक का वक्त दिया गया। कुछ तरकीब के वास्ते पुकारा, अब उस वक्त उनको बुलाया क्योंकि जरा दूर थे। इन उन साहेब ने जुबान से हाँ तक नहीं कहा, पूछने पर जी बोल देना, जी मैं आ रहा हूं, इस तरीके से ताकि बुलाने वालों को मालूम हो जाए कि वो हमारी बात सुनती है, बल्कि खुद अपनी जगह से उठ कर रवाना हुए, इसकी इतना ना हुई। इसलिए दोबारा इश्तियाक से पुकारा कि शायद सुना नहीं, दोबारा हजरत पुकारा, इतने में वो खुद आ गए। इस्तफसार फरमाया कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, या जवाब के लायक मुझको नहीं समझा। मैं इतना यह हो गया क्या, मैं पुकारे तुम्हें तुम काम करना, जवाब देने से दाई को मालूम हो जाता है कि मजलूम ने सुन लिया, और जब जवाब न देने में उल्फत होती है, तकलीफ होती है कि वो दूसरी मरतबा पुकारे, तीसरी दफा आवाज दे, तो दूसरे को यह तकलीफ महज आपकी लापरवाही और सुस्ती की वजह से हुई कि आपसे जुबान नहीं हिलाई गई। इसलिए कभी भी बुलाए तो बच्चे भी जो है माँ बाप के बुलाने को बुरी बोलते हैं, माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता, मैं बुलाता हूँ जवाब भी देता ही करते, ऐसे वक्त में फौरन बोल देना चाहिए, काम में रहने से भी अभी थोड़ा काम में हूँ आता हूँ, उस तरीके से बोल देना, नहीं बोलने पर गुस्सा आ जाता है। अगर आप हाँ कह देते हैं तो क्या मुश्किल था। हजरत फरमाते हैं आजकल रूह की तालीम हर जगह है, लेकिन अखलाक की तालीम मिसले उनका है। अब तबीयत परेशान हो गई, फिर दूसरा वक्त आपको दिया जाएगा, इसमें इस अमर का लिहाज रखा जाए। अब आप जाइए, हजरत उनको भेजते। अच्छा, जब बड़े कोई बात बोलते रहते हैं तो उनकी बात पूरी होने तक उसको सुकून से सुनना, बीच में अपनी बातें अपना ख्वाब और इस तरीके की बात बोलना नहीं शुरू करना क्या। तो इसमें भी हजरत किस का सबक दे रहे हैं। एक जाकिर ने अपनाए तालीम में कि अभी तकरीर खत्म भी नहीं हुई थी कि अपना ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया। तो हजरत फरमा रहे हैं कि ये क्या हरकत है कि एक गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, दूसरी बात उसमें दाखिल कर दी। अच्छा, अब हजरत जो है बराबर रटकू पकड़े, आपकी दखल नहीं के ये माने हैं कि मकसूद ख्वाब बयान करना है, मेरी नसीहत को कबूल करना, सुनना, मैं जो तालीम दे रहा हूं उसको सुनना मकसद नहीं है, तुम्हारा ख्वाब बयान करना मकसद है। कि आपकी दखल नहीं के ये माने हैं कि मकसूद ख्वाब बयान करना था, और तालीम और तलकीन आपके नजदीक फजूल है, तो इसलिए जो चीज हाजिर की रहती वो बोलना, जो गायब की रहती वो बोलना। हमारे पीर साहब हजरत के शेख है हजरत गुलाम हबीब, गुलाम हबीब रहमतुल्लाह ने, उनके पास लोग अगर काम बयान करते तो अच्छे अच्छे काम बयान करते, तो हजरत सब सुनने की बात फरमाते भाई अच्छा काम ये है कि बुरा नहीं है। आप मुझे अच्छा काम सुना है, अच्छे काम की अच्छाई और खूबी यह है कि वो क्या नहीं है, बुरा नहीं है। अगर आप अच्छा काम देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा वैसा उसी को असल बना लिए, समझ गए। तो इसके से बात को खत्म कर देते थे। गोया मेरा इतनी देर तकलीफ करना लाया गया, आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, अब उठो दूसरे वक्त बदला दिया जाएगा, इस वक्त तुमने दाली इनकी बेतकलीफ की है। अल्लाह वाले जो किसी हाल में होते हैं वो कबूलियत की वक्त होती है, घड़ी होती है, उस वक्त कोई चीज मुंतकिल करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ऐसे वक्त पर खलल अंदाज जो है बहुत बड़े खैर को रोकने का जरिया सब बन जाता है। तो ऐसे वक्तों में बेजा बात और इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। जब कोई तुमसे बात करे बेतवज्जो ही से ना सुनो, ये भी होता बाल वक्त, आजकल मोबाइल ला जाकर उन्हें बोलता है हाँ बोलो बोलो, अब कान ही देख लेकर उसका चेहरा भी नहीं देखते हैं, अब वैसे ही बात कर रहे हैं बेतवजी से, अब साथ ये भी बोलते बोलो बोलो तुम्हें, अब इतना गुस्सा था बाल वक्त, हम उसके काम से गए रहते हैं, उसका मकसद मतलब रहता है, अब वो देखने भी तैयार है। तो फरमाया जब कोई काम से बात करें बेतवज्जोही से ना सुनो कि मुतकल्लिम का दिल उससे अफसोसा हो जाता है, खुसूसन जो तुम्हारी ही मसलहत के लिए कोई बात वो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा है, ऐसे वक्त तुम तवज्जो ही नहीं देते बेतवज्जोही से, कोई बात कहे या तुम्हारे सवाल का जवाब देता हो और उसमें भी खुसूस जिसके साथ तुमको नयाजमंदी का भी ताल्लुक हो वहां बेइंतिफाती करना और भी ज्यादा बुरी बात। इसीलिए हजरत साहब पूरी तरीके से हमारा तन होते पूरा वजन गया के कान बन जाता है, हमारा तन गोश को लेकर पूरी तरीके से पूरे वजूद को कान बनाकर तवज्जो से सुनते थे, जरा बराबर भी बात सुनने नहीं, और इनकी पहली सीढ़ी सुनना है अव्वलुल इल्मि अल इस्तिमा, और कल कयामत में जो लोग पछताएंगे अफसोस करेंगे वो भी यही बोलकर पछताएंगे, लव कुन्ना नस्मऊ औ नातिऊ मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश हम सुनते नसीहत करने वालों की नसीहत को सुनते ये उनकी अच्छी बातों को हम सुनते यानी कमस्तम हम अपनी अकल से सोचते अच्छी बात क्या बुरी बात क्या हक क्या ना हक क्या इसको हम सोचते तो थे वहां सुनना भी अच्छा भी सही तो हम जहन में नहीं, तो सुनना जो है ये इसकी पहली चीज वजह अलग से मुस्तमा वल्ला बुसारा वल्ला मीना वल्ला मकर जैसे तुम बुतू जुम्मा हा तिकुम, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मां के पेट से निकाला तो ला तालम हो नहीं है तुम कुछ भी नहीं जानते, अल्लाह ने तुम्हें सुनने की ताकत दी देखने की ताकत दी समझने की ताकत, तो सुनने का तरीका अल्लाह पहले करते मजे तो, लेकिन आज इन के बाद में पढ़ने पढ़ाने की जगह में सबसे पहले लापरवाही सुनने ही में होती, अब वो सुनेगा नहीं तो क्या समझेगा क्या, तो इसलिए तलबा को इसका खास ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने वालों को पहले सुनना क्या बोलते हैं, बात कोई भी हो कोई भी कह